عينة.
تخويا كمان
وي كوش تو كينا كهونا كهو
كوجو تچاو
بولتی ہے پیجو کوش نا
کچھ کہیے نا کچھ تے آکھو سفر میں اے سہارا
ہے کوئی گال کرو نا جی ساحلوں کا اے
کنارا ہے. السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے کچھ تو کہیے, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. مہمان ہمارے آج بڑی معروف شخصیت ہیں, جب میں آپ سے ان کا تعارف کرواؤں گی تو یقیناً آپ ان کو پہچان جائیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے آپ کی بات چیت کروائیں, ایک جھلک ان کے کام سے. تو سامعین, فلم بھائی لوگ ہے اور اس کے ڈائریکٹر اور معروف کہانی کار اور سینکڑوں فلموں کے ڈائریکٹر اور کہانی کار پرویز کلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. جی پرویز صاحب, السلام علیکم. پرویز صاحب
جی,
جی اب آپ کی آواز آئی ہے. تو پرویز صاحب کوئی کسی آپ فنکشن میں تھے, تو یقیناً کوئی فلم سے متعلق ہی فنکشن تھا جس میں تھے آپ اس وقت.
جی وہ فلم کے متعلق ہی فنکشن تھا, ریوائیول اور سروائیول کی باتیں ہو رہی تھیں گفتگو کی حد تک.
ہاں صحیح, میں بھی یہ کہنے والی تھی کیونکہ سینما سے ایک دیکھنے والے کی حد تک مجھے بہت ہی پیار ہے, لیکن یہ کہ کئی دفعہ اس میں ڈسکشنز ہوئے مصطفیٰ قریشی صاحب اور بہت سارے لوگ جو کہ ڈائریکٹر ہیں, کہانی کار ہیں اور جو محبت کرتے ہیں سینما سے, وہ آئے بھی. لیکن میرا خیال ہے وعدے سب حکومتیں کرتی ہیں, لیکن شاید حکومت کا کوئی بہت دلچسپی ہے نہیں فلم میکنگ میں. یہ ہے
وہ اصل میں, یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ شروع سے ہی یہاں جو پاکستان فلم انڈسٹری ہے یہ ایک یتیم بچے کی طرح ہی ہے جس کے سر پہ کبھی کسی نے دست شفقت نہیں رکھا. ہاں دیکھیے, اب آ کے ایک کام کیا اس حکومت نے کہ اسے استثنا کر دیا ٹیکس سے, تو تھوڑا سا وہ اب یہ پوزیشن ہے ماشاء اللہ کم بیک ہوا ہے آنیسٹلی. کہ آپ دیکھیے کہ کراچی میں ماشاء اللہ اس وقت 25 سے 30 فلمیں بن رہی ہیں اور لاہور میں اس وقت 7 سے 8 فلمیں. یہ ڈیجیٹل فارمیٹ پہ سارا کام ہو رہا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کے. ساؤنڈ جو ہے وہ 5.1 جو ہے جو انٹرنیشنل معیار وہ پراپر جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے, اور یہ یوتھ بھی اس میں شامل ہے اور چند میرے جیسے سفید بالوں والے بھی شامل ہیں اس میں. لیکن یوتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمیں بڑے پر امید ہیں اور خوشائیں میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ یوتھ نے جو ہے وہ بڑا سنبھالا ہے اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ پر بھی ان کی جو ہے. تو ہمارے یہاں چونکہ تھوڑا سا ذرا فقدان رہا پہلے, لیکن اب ایک دفعہ پھر سے دوبارہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے. چونکہ کراچی ہو, پشاور ہو, لاہور ہو, کوئی بھی جگہ ہو, وہ اصل میں پاکستان کی فلم ہے, کہیں بھی بنے وہ پاکستانی فلم ہے. ٹھیک ہے نا جی,
بالکل.
تو اس وقت ماشاء اللہ, ہاں تو اس وقت یہ ماشاء اللہ بڑا اچھا ہو رہا ہے. ابھی بھی ہم ابھی میں اپنی فلم بلائنڈ لو دیکھ سکتے ہوں اور وہاں میں آیا ہوں, تو بلائنڈ لو بن رہی ہے, اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں فیصل بخاری, میں نے لکھی ہے وہ خالی فلم. تو ماشاء اللہ ہو رہا ہے. پھر ابھی میں کراچی میں ابھی ڈیجیٹل فلم بنا کے آیا ہوں جی, دل کو مارو گولی شوٹ ہارٹ.
جی
ٹھیک ہے جی. تو اب देखिए ना, हम भी इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। जब से हमने
वैसे आप बहुत उम्र का जिक्र कर रहे हैं परवेज कलीम साहब, मगर आपकी अभी ये जो मैंने गाना सुनवाया भाई लोग का और दिल को मारो गोली, कुछ फिल्मों के मैंने वो देखे जो प्रोमोज आपने बना रखे हैं, तो माशाल्लाह से मतलब फिल्मों को देख के तो लगता है कि दिल खासा जवान है आपका अभी तक। बहुत मतलब
वो ये है सर, वो ये है कि दिल के चेहरे पे कभी झुर्रियां आती नहीं, और बुढ़ापा तो बुढ़ापा होता है, बाल तो सफेद हो ही जाते हैं।
बिल्कुल
ठीक है जी, सर जाते हैं जो जिनके सर में नहीं बाल आते सफेद, लेकिन वैसे ही अगर देखा जाए तो बुढ़ापा तो बुढ़ापा होता है, वो तो जाहिर है। आई एम 60 नाउ, तो वो जाहिर है कि वो तो होगा, लेकिन ये है कि अल्लाह का ये शुक्र है कि इरादे अंदर जो कुव्वत है, जो एनर्जी अल्लाह ने दी हुई है, वो नौजवानों जैसी ही है, तो आज भी काम कर रहे हैं शुक्र है, वरना तो आपको पता फिल्म शूट नहीं हो सकती जब आदमी बिल्कुल ये इस पोजीशन में आ जाए।
वैसे आपकी फिल्मों में जितना एक्शन होता है, जैसे भाई लोग है और जो टॉपिक है, ये वही है जो मतलब यंगस्टर्स जो है बहुत देखते हैं, और असल में तो फिल्म में देखने वाले सबसे ज्यादा नौजवान ही है। तो ये हम अभी बात करेंगे बहुत सी, ये आपकी पूरी एक घंटे में समेटना तो मुश्किल है, कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन उससे पहले हम एक अपने भी थोड़ी सी प्रोमो बजा के थोड़ी सी शोहरत कर लें, फिर आपसे बात होती है।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, फिर बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो सामीन आपको मैं टोल फ्री नंबर भी लिखवा दूं, क्योंकि इतने अच्छे से डायरेक्टर और कहानीकार हमारे साथ हैं, आप फ़ोन करना चाहेंगे 0800-777-89 इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। कुछ नंबर हमारे पास है, हम कोशिश करेंगे फ़ोन करने की। तो हम शुरू से ज़रा चलते हैं आपकी, यानी जब सचमुच आतिश जवान था और बल्कि बच्चा था, क्योंकि आपके वालिद साहब जो थे उनका ताल्लुक भी मतलब डायरेक्शन या कहानी के हवाले से नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से रहा है,
हिंदुस्तान से यहाँ लाहौर। तो यहाँ आना जो सेटलमेंट कमीशन होते थे वो अलॉट में उस दौर में हुआ करती थी, तो उनको खाने वाले रादू पैलेस खाना अलॉट हो गया था।
अच्छा,
तो मैं यहाँ लाहौर में पढ़ता था, तो चूंकि मुझे छुट्टियों में सनमा जाने का वाले साहब ले जाते थे लाहौर आके, मैं वहाँ जाता, वहाँ जाके मैं उनका वो प्रोजेक्टर देखता, वहाँ वो फिल्म को देखता रोल करते हुए, फिर स्क्रीन को देखता, साउंड देखता, तो मुझे एहसास होता कि ये क्या है। तो आप यकीन कीजिए कि वो मेरे अंदर डेवलप होता रहा, शायद मेरे अंदर कुछ फिल्म मेकर जो था वो डेवलप ना होता अगर मेरा ये एनवायरमेंट ना होता मेरा माजी का
जी।
तो लिहाजा वो यूँ समझ लीजिए मैं बस फिर अभी पढ़ ही रहा था, तो मैंने तालीम अपनी अधूरी छोड़ के तो मैं स्टडीज में इन हो गया, और मैंने काम जो है एक अप्रेंटिस असिस्टेंट से काम शुरू किया है, ये जो तारे में पेटते हैं, और कैमरे पे मैंने काम शुरू किया था। रशीद कादरी साहब मरहूम जो सिनेमेटोग्राफर थे, बहुत मशहूर मारूफ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, उनके साथ मैंने एज अप्रेंटिस काम शुरू किया था, और फिर अल्लाह का शुक्र हुआ कि मैं एज डायरेक्टर एज असिस्टेंट डायरेक्टर फिर काम करना शुरू किया हुसैनी साहब के साथ, हमारे वो भी बुजुर्ग थे उस्ताद थे, उनसे काम किया, फिर और लोगों के साथ काम किया, फिर यानी सरदार साहब के साथ काम किया, बहुत से लोगों के काम करते करते तकरीबन कोई 15 वर्ष के बाद मैं एज ए डायरेक्टर मेरा जरूर हुआ और मैंने फिल्में जो है वो एक दो बनाई और वो कोई खातिर खास कामयाबी हासिल न कर सकी।
तो कौन सी शुरू में कौन सी फिल्म थी आपकी पहली जो बनाई?
जख्म थी मेरी पहली फिल्म।
अच्छा,
तो वो कुछ बहुत आला दर्जे का कारोबार ना कर सकी और उसमें असल में कुछ शुक्म थे, वो कुछ प्रोडक्शन के हवाले से थे, क्योंकि मैं नया था, मुझे चांस दिया गया था, तो बड़ी मुश्किल में था मैं, कुछ ऐसे नाम मसाइल से गुजर के वो फिल्म बनी थी, बहुत अजीब। खैर उसके बाद फिर अल्लाह ने किया तो मैंने बाजार हुस्न जो है वो की, 88 की बात है ये
जी।
और बाजार हुस्न नदीम और सलमा आगा और इन लोगों की थी और पिक्चर अल्लाह ने फिर उसको कामयाबी का वो चेहरा दिखाया कि हिंदुस्तान ने उसको 2 दफा कॉपी किया। मैम सबसे बड़ी बात है कि दो हिंदुस्तान में 11 फिल्में मेरी कॉपी हुई है।
अच्छा।
और रिकॉर्ड है ये जी।
कौन कौन सी फिल्म, थोड़ा सा अगर आप शायद सुने।
बाजार हुस्न उसने पति पत्नी और तवाज के नाम से बनाई थी, मैंने यहाँ कैद लिखी और संगीता ने डायरेक्ट की और मैंने लिखी और वो फिल्म जो है वहाँ शक्ति के नाम से बनाई गई
जी।
फिर उसके बाद मेरी फिल्म है जल के बदन, जी क्यों के नाम से वहाँ सलेमान खान करीना और उन्होंने वो बनाई थी। और इस तरह मेरी फिल्म है आपदा, मैंने बहुत देर पहले एक पंजाबी की बड़ी सॉफ्ट फिल्म लिखी थी मैंने।
अच्छा।
वो जो फिल्म थी वो उस फिल्म को लागा चुंडी में दाग बनाया, इस तरह 11 फिल्में हैं।
अच्छा।
मैं सुनाऊंगा प्रोग्राम गुजर जाएगा 11 फिल्में बताते।
चलिए हम तो, उसकी तफसील ऐसा ऐसा फिल्मों के हवाले से बातें होगी, लेकिन मुझे आपके पीछे किसी बड़े शोला बया मुकर्रर हैं, उनकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा अगर मेरी फरमाइश और कर दूंगी थोड़ा सा और दूर हट जाएगी आप इस जगह से तो हमें बेहतर आपकी आवाज, क्योंकि पीछे से काफी उनकी ऊंची आवाज आ रही है तकरीर की।
जी जी मैं अच्छा क्या कहना जी
जी
तो मैं जी मैं सेट के तो आपको पता है एक माहौल होता है
जी, तो थोड़ा दूर जा सकते हैं
इस भाई को भी,
तो हम थोड़ा सा एक गाना आप ही की फिल्म से यही भाई 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 लोग का बजा दें और इतने आप थोड़ा फासला अगर
मैं आ गया बाहर आ गया मैं।
अच्छा बस बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारा ये प्रोग्राम भारत में भी सुना जाता है खास तौर से भारतीय कश्मीर में जी, तो खुर्शीद रसूल वहीं से प्रोग्राम उन्होंने फोन पे हैं हमारे साथ, तो खुर्शीद रसूल आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। खुर्शीद अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद रसूल जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम भैया जी। वालेकुम सलाम जी। खुर्शीद क्या सवाल है आपका?
हाँ मेरा सवाल ये है कि जो जो भारत ये है ना फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में बेसिक क्या फर्क है, मेहमान से मैं पूछना चाहता हूँ।
अच्छा आप किस जगह से फोन कर रहे हैं कश्मीर में?
जी मैं पुलवामा से कॉल कर रहा हूँ।
पुलवामा से। अच्छा बहुत शुक्रिया खुर्शीद रसूल आपका।
सना जी सवाल इनका था कि ये कह रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में क्या फर्क
जी, बुनियादी फर्क है जी, बिल्कुल
यही सवाल था ना
जी। हाँ बिल्कुल।
बात यह है कि ये फर्क ये है, फर्क देखिए थॉट्स जो होते हैं वो कागजों पे तहरीर होते हैं, फिल्म जो है वो सनलाइट पे पहले बनती थी, अब डिजिटल हो गई है तो अब और तरह से काम हो रहा है। लेकिन बात यह है कि हिंदुस्तान 24 सूबे हैं, बहुत बड़ी टेरिटरी है, इंटरनेशनल मार्केट उनके बुजुर्गों ने बहुत कैप्चर की हुई है। अभी हमारे यहाँ इतनी वो नहीं थी, लोग इतने नहीं थे अवेयर, तो उन्होंने पुराने जमाने में जब अभी मिचेल पे काम हो रहा था, हम पुराने कैमरों पे वो भी काम कर रहे थे, हम भी काम कर रहे थे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सजा थी सजाइया था, तो कंपेरेटिवली फिल्में बनती रही। लेकिन उसके बाद आके उनका प्रोडक्शन लेवल जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आगे निकल गया। हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा, अभी भी आप हैरान होंगी, हमारी पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म अभी तक वॉर बनी है, ठीक है, और आप यकीन कीजिए कि उससे महंगी एक फिल्म बनी यहाँ सल्तनत, वो मैंने लिखी है सल्तनत।
अच्छा।
जो 22 करोड़ रुपए की बनी है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ टेरिटरी इतनी नहीं है कि कोई इन्वेस्टर जो है वो इतने पैसे इन्वेस्ट करे। हम रेगुलरली ज्यादा से ज्यादा हम 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए की फिल्म तो अफोर्ड करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और हिंदुस्तान 50 करोड़ से शुरू होकर 125 करोड़ रुपए तक जा चुका है। अब देखिए ना कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो हम किसी हम अलामती ये है कि हम सपोज कंटेंट से फाइट कर सकते हैं, हम कंटेंट से कोई बात बड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए एजुकेशन, उसका प्रेजेंटेशन, वो हम मेरा ख्याल है कि इतना वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे सरमाए की जरूरत होती है. तो हमें ना अभी कंट्रोल्ड और हमें लिमिटेशंस में रह के काम करना होता है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो एक कंपेरेटिवली जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये हमारे पास अभी डिजिटल आया है, हमारे पास ये 4-5 वर्ष हुए हैं और हिंदुस्तान के पास डिजिटल आए हुए आज 15 साल से 20 साल हो गए माशाल्लाह, और वो मैनुअल काम कर ही नहीं रहे थे और इतना वो कर रहे थे, उनका ग्राफिक्स भी हो रहा था, चीजें भी हो रही थी, अवेयर भी थे वो लोग, ठीक है जी, एजुकेशन भी लेवल जो है उनका रेटिंग बहुत ज्यादा थी, तो वो सारा था. लेकिन कंटेंट में आज भी हम अल्लाह के हुक्म से आज भी हम यहाँ जो है वो बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं. लेकिन ये है कि वो लोग जो जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास मार्केट है, जिनके पास इंटरनेशनल मार्केट है, जिनके पास अपनी मार्केट है 24 सूबों की, जाहिर है वो फिर 125 करोड़ की फिल्म बनाते हैं तो उसके सामने 3 लाख करोड़ की फिल्म जो है वो अपने कंटेंट से तो लड़ सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तस्वीर कैसी है, मेरा ख्याल है शायद मैं इसमें कभी भी मोबाइल से काम नहीं लूंगा. हम अभी थोड़ा सा जरा थोड़े कमजोर हुए हुए हैं, इसलिए कि हमारी फिल्में जो हैं उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर कोई नहीं है ऐसा जो, हाँ आज अगर हमारे आज कॉर्पोरेट सिस्टम पे काम होना शुरू हुआ है, आज फिर से दोबारा एक रिवाइवल हुआ है, मुमकिन है कि हमारे यहाँ के आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में हम इंटरनेशनल मार्केट को भी हमारे बंदे देख रहे हैं. अब बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे अवेयर हैं, वो जा रहे हैं आ रहे हैं, बेचारे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, ये हो रहा है, ई मेलें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है. मुमकिन है कि कल इंशाल्लाह हम भी इंटरनेशनल मार्केट को जो है वो देख सकें पूरी तरह, उस पर हम भी एक हम भी हमारे अगर उनकी 4 सिनेमाओं में फिल्म लगी तो हमारी भी 2 सिनेमाओं में लगी हुई हो, तो फिर उससे ये होगा कि जब वहां से हमें कुछ मिलेगा तो यहाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है और इंशाल्लाह ताला जो है
आगे बढ़ेगी,
फिल्म बनाएगी.
अच्छा परवेज साहब, वैसे आपको क्या कहते हैं लोग, आपको परवेज साहब हैं आप या कलीम साहब, किस नाम से याद ज्यादा पुकारते
हैं? जी कलीम के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं.
अच्छा कलीम के नाम से. अच्छा तो हमारे कॉलर्स हमारे साथ हैं विहारी से जफर इकबाल. जी जफर साहब अस्सलाम वालेकुम.
जफर मेरी मोहतरम बहन, बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम में शामिल हो रहा
हूं. हां ये तो मुझे कहना चाहिए, ये क्या हरकत है, कहां गायब हो गए थे?
बाजी को सेहत खराब हो गई थी, इलाज करवा रहा.
अच्छा चलिए अल्लाह में आपको सेहत याब करे.
बहन है बात करने की दुआ बड़ी कबूल होती है, अल्लाह ताला फरमाता है.
बिल्कुल बिल्कुल
बड़ी मेहरबानी जी.
जी
तो गुजारिश ये है कि परवेज मलिक साहब,
परवेज कलीम साहब,
कलीम साहब बड़े मशहूर थे, उनके और ये परवेज कलीम साहब के आपस में दोस्ताना है या ताल्लुक है इनका भी आपस में? वो बड़ी अच्छी फिल्में बनाते थे वो भी.
अच्छा बताइए, ये बड़े घरेलू मालूमात
है जो 70 और 80 की दहाई में फिल्में बनती है, वैसी फिल्में बनाए ताकि इनके फैन में वो आबाद हो जाएं जी. ये मशवरा है जी.
ये तो उन लोगों में से हैं जो 70 और 80 की दहाई में बना रहे थे अच्छी फिल्में. तो चलिए लेकिन ये बताइए, इनका सवाल ये था, ये बड़े अंदरूनी खाना गुफ्तगू राज ढूंढ के लाते हैं, पूछ रहे हैं परवेज मलिक और आप जो है नाम मुशावे हैं, तो क्या दोस्त भी हैं आप लोग आपस में?
नहीं 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 दोस्त नहीं, वो मेरे बुजुर्ग थे, वो मेरे सीनियर हैं.
अच्छा
वो मेरे उस्ताद हैं. मैं जो हमसे सीनियर होता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, आज भी उसको जो है उसको जो हम उसका तकाबुल ही नहीं करते किसी के साथ. परवेज मलिक साहब हमारे बुजुर्ग थे, लेकिन बात यह है कि परवेज कलीम उनके बाद आया है, वो पहले थे
जी.
वो माशाल्लाह जब अरमान बना रहे थे और हीरा पत्थर बना रहे थे तो आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंटर्स असिस्टेंट डायरेक्टर.
अच्छा
तो वो हाँ जी. तो बात यह है कि उनसे मेरा ताल्लुक, मेरी निस्बत मेरा खानदान है, मेरी फैमिली है वो, इसलिए कि वो मेरे ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, मैं उनका एहतराम अपने वालिद की तरह करता हूँ.
बिल्कुल सही, तो निस्बत इन्होंने सही ढूंढी फिर तो. अच्छा मियां वाली से है मुरीद खान साहब. जी मुरीद खान अस्सलाम वालेकुम.
जी अस्सलाम वालेकुम जनाब. मैं अर्ज करना चाहता हूँ अपने करीम साहब से कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया की आवाम है, इनके तो आपस में प्यार मोहब्बत है, और ये जो हमारी हुकूमत है थोड़ा सा उनका रवैया और होता है, तो ये हम आपस में मिलकर क्यों नहीं फिल्में बनाते? और बहुत बेहतरीन लोकेशन है पाकिस्तान में, सवाद, हुंजा, गिलगित और ये हमारे शुमारी इलाके जात में, तो ये कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और ये जम्मू कश्मीर और ये आजाद कश्मीर, ये रल मिलकर क्यों नहीं बनाते फिल्म जनाब?
जी आप को सवाल समझ में आया इनका जो था परवेज कलीम साहब? मेरा ख्याल है परवेज साहब का ऐसा लग रहा है कि फ़ोन तो नहीं कट गया, तो پرویز صاحب آپ کو
جی میں ان کی بات پراپر سن نہیں پایا.
اچھا
یہ لہجہ ہے کچھ ان کا ٹون ایسا تھا کہ میں ان کی بات کو سمجھ نہیں پایا. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں کہ سوال کیا ہے.
جی ضرور. نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ, مرید خان صاحب آپ کا سوال ہو گیا. اب آپ میں آپ کا سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں, ان کو سننے میں نہیں آ رہی آپ کی آواز. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ عوامی سطح پر تو دونوں جگہوں پہ محبت موجود ہے, عوام کی سطح پر ہندوستان اور پاکستان میں, تو کیا اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ دونوں ملک مل کے فلمیں بنائیں, تعاون کریں فلمیں بنانے میں؟ اور انہوں نے ایک سوال پوچھا جس کا جواب میں جانتی ہوں کہ آپ کیا دیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو لوکیشنز ہیں جیسے کہ سوات گلگت اور وہاں پہ آ کے وہ لوگ شوٹنگ کریں اور آپ لوگ انڈیا میں جا کے ان کے پرفضا علاقوں میں کریں, تو پاکستان میں تو اس وقت جو امن و امان کی صورت حال ہے تو خود پاکستان کے لوگ وہاں جا کے شوٹنگ نہیں کر رہے, تو مجھے آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں اس کا. جی
جی جی دیکھیے بات یہ ہے کہ بھائی کا جو جذبہ ہے وہ تو بڑا سچا اور سچا ہے.
جی
وہ چاہ رہے ہیں فروغ, وہ چاہ رہے ہیں فروغ ہو نا, فلرش ہو اور زیادہ بہتر ہو اور زیادہ اچھی ہو. بالکل میں ایک صرف ایک سوال ہے میرا بھائی سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ 125 کروڑ روپے میں ایک پروڈیوسر کوآرڈینیٹ کرتا ہے یہاں سے پاکستان سے, جس میں جو 3-4-5 کروڑ کی بس زیادہ سے زیادہ فلم بنانے والا ہے, مجھے بتائیے اس کا ریشو کیا بنے گا. ایک 100 کروڑ کی فلم میں وہ ہم اسے پارٹنرشپ میں کوآرڈینیٹ کر کے ان کے ساتھ ہم کریں, وہ کمبو بنے کیسے, تو کیسے وہ کیا ریشو کیا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو صرف یہ ہے کہ ان کے جذبے بڑے صادق ہیں, یہ بڑی سچی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یار فلاری جو ہماری انڈسٹری بھی ایسے ہو, ہم لوگ بھی اتنا کریں, لیکن تھوڑا سا کچھ معاملات ہیں, کچھ ایسے سسٹم ہیں. ابھی ہم چونکہ اب میں نے عرض کیا ہے کہ پاکستان میں یہ بڑی مہنگی فلم ہوتی ہے جو ہم بنا رہے ہیں, سپوز یہ 4 کروڑ 5 کروڑ, وہ ٹھیک ہے اکا دکا بن گئی, وہ 20 کروڑ کی ایک بن گئی, میں ہم نے ایک 22 کروڑ کی بنا لی, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جتنا بھی چل رہا ہے وہ بھی ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ وہ نہیں ہیں کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کر سکے, چونکہ ہمارے پاس مارکیٹ نہیں ہے. جہاں سے دیکھیے پروڈیوسر چاہے گا کہ میں انویسٹ کر رہا ہوں, تو میں انویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ریٹرن ملے, ٹھیک ہے. میں اس کو رات کنوینس کروں سر میں بڑی اچھی فلم آپ کے لیے بناؤں گا, سر میں آپ کے لیے بہت اچھا کام کروں گا. وہ کہتا ہے سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ ایک فیزیبلٹی تو بنائے نا میرے لیے, ایک رپورٹ ایسی تیار کریں جس میں مجھے پتا چلے کہ میں جو پیسے انویسٹ کروں گا وہ مجھے آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو ابھی ہمارے بھائی تھوڑا سا جو سوال کرنے والے ہیں وہ پیارے, جو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری بھی ان کو ویسی ہی طاقت میں دکھائی دے جیسے ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہے, تو یہ ایسے ذرا تھوڑا سا ابھی مسائل ہیں. انہیں 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 اللہ پاک کرے ان کی ان کے جو جذبوں کی صداقت جو ہے انہی کی سچے میں جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ اس میں ہمارے سسٹم ہمارا حالات و واقعات ہماری انوائرمنٹ درست ہو اور ہم اچھا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی انٹرنیشنل مارکیٹ ہمارے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں.
اور لگ رہا ہے کہ جب آپ تعداد دیکھیں نا جو لوگ فلمیں دیکھنے آنے لگے ہیں اور جو ختم ہو گئی تھی دم توڑ گئی تھی بالکل, کیونکہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, یہ ایک بہت ہی اچھی تفریح ہوتی تھی کہ لوگ جاتے تھے اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلم دیکھنے. نہیں وہی وہی دوبارہ شروع ہوا ہے. جی ہاں بالکل, میں ابھی پاکستان گئی تھی. جی ہاں بالکل بالکل. اچھا چلیے ایک جھلک ہم ایک جھلک ہم پہلے لے لیں. آپ کی سلطنت کا آپ نے ذکر کیا تھا تو اس کا تھوڑا سا پرومو سے ایک جھلک.
Underworld, where power is the ultimate truth, but on the road to power, victory is all that matters. Saltanat.
اس کے انداز بتاتے ہیں کہ قانون کو ڈومینیٹ ضرور کرنا چاہتا ہے.
زمین پر رینگنے والا کیڑا جب جسم پر چڑھا ہے تو اس کو اسلم
the chief of B company, respectfully known as Aslam Bhai.
Aslam, 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 Aslam! Khoon kar dunga us Aslam ka main.
Mujh mein sama gaya, tu dhadkan ki tarah. Kaisa hai ye nasha, kya kahe? Mere dil ke falak pe hai tu.
तो करीम साहब ये बताइए मुझे कि आपके अक्सर फिल्मों में डॉन का और माफिया का जिक्र होता है, यानी आपको पसंद है ये सब्जेक्ट या इत्तेफाक से मैंने जो क्लिप्स ढूंढे उसमें ये जिक्र ज्यादा आ गया?
मैं तो गुनाह जैसी फिल्म, बाजारे हुस्न जैसी फिल्म, आपदा जैसी फिल्म, आसमान, लीडर, मैं तो इस तरह का काम करने ज्यादा करता हूँ.
अच्छा.
ये इत्तेफाक से आपके पास जो प्रोमोज हैं वो इत्तेफाक से सल्तनत और भाई लोग के वो सारे वो एक्शन टाइप थोड़ा सा है. ये मैंने बड़ा कम काम किया है वैसे.
अच्छा,
माफ कीजिएगा.
अच्छा, दूसरी सोशल
ज्यादा. हाँ, सॉफ्ट काम करना पसंद करता हूँ. सॉफ्ट ही मेरी फिल्में हैं. मैंने खुद भी जो बनाई है सॉफ्ट फिल्में बनाई है और मैंने कोशिश की है कि उन फिल्मों में जो बात कही जाए वो इतनी आहिस्तगी और इतने अच्छे तरीके से कही जाए कि लोगों के जहन तक पहुंचे, क्योंकि इबलाग का सबसे बड़ा जरिया फिल्म है.
बिल्कुल,
आप समझ रहे?
बिल्कुल. और लोगों के दिल में रहती है वो कहानी ना बहुत तो दिन तक.
बाजारे हुसन मेरी उठाए ना जी. अभी आपको कहीं से लाए वो बाजारे हुसन हो या आप लीडर है या आसमान है या वतन के रखवाले है. मैंने तो नेचुरलिज्म पे पाकिस्तान की सरजमीन पे 7 फिल्में लिखी हैं सर.
अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कलीम साहब ये बात नोट की. आप जैसे लोग जो कि सचमुच जो बहुत काम कर रहे होते हैं ना, वो आम तौर से उस तरह के कामों से थोड़े बेनियाज होते हैं, जिससे वो मतलब सोशल मीडिया से ना, क्योंकि उनका अपना काम इतना अहम होता है उनके लिए. लेकिन इसका नतीजा क्या होता है, जैसे आज जब मैं आपके क्लिप्स, आप यकीन करें मैंने कई घंटे जब से मेरी आपसे बात हुई तलाश में करती रही, तो मुझे आपकी चीज़ें, बल्कि हर दफ़ा इंडिया की कोई फिल्म उसी नाम की आ जाती थी. और तो इसकी वजह ये है कि आप अपने बच्चों के जिम्मे काम लगाइए, ये बच्चे काम बहुत अच्छा करते हैं.
ये हमारे बच्चे, देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ा अच्छी बात की है आपने. देखिए वो हमारे प्रोमोज सोशल मीडिया पे फेंक सकते हैं, वो हमारी चीजें कर सकते हैं. आज यूथ के पास, आप भी जानती हैं मेरा ख्याल है, बेशक अमेरिका हो या लाहौर हो, कम अज कम जो फीलिंग्स हैं वो सबकी एक जैसी
एक जैसे हैं. बिल्कुल.
तो मैं समझता हूँ कि यूथ जो है वो थोड़ी बेनियाज है. वो अपने बाप का काम इस तरह से कि जी उसको ये भी चाहिए, उसको ये भी करना चाहिए हमें, वो मेरा काम कहेंगे. मेरा काम इतना है कि लोग थक सकते हैं, क्योंकि सर मैंने जिंदगी भर काम ही तो किया है, कुछ और तो किया ही नहीं, सिर्फ काम ही है और कुछ है ही नहीं जिंदगी में. ना कुछ खेल है,
मुझे
ना कुछ तमाशा है, कुछ भी नहीं है.
काम तो ये गवर्नमेंट का था ना कि कोई आर्काइव होता.
किया मैंने, मैं बड़ा आर्टिस्ट ही काम करने वाला आदमी हूँ. मैं तो ये इससे बड़ा घबराता हूँ ये लाउड काम से. लेकिन ये है कि कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा काम भी करना पड़ता है और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि हम अल्लाह के हुक्म से मार्शल कौम है, हमें ऐसा थोड़ा सा वो भी करना चाहिए. लेकिन ये है कि मैं जरा ऐसी मैं कोशिश करता हूँ ऐसा काम हो जो थोड़ा दिल की रगों में उतरे, ऐसा काम हो जो फीलिंग्स में आए, जो मोहब्बत की अलामत हो काम, वो काम हो जो प्रचार कर रहा हो अच्छाई का, तामीर का. मेरी ये आदत है जी.
वैसे करीम साहब इसी है, इसे एक
इस बात का ये पता नहीं, मेरे अंदर ही कोई ऐसा किस्सा है कि मैं इसी तरह कोशिश करता हूँ.
लेकिन करीम साहब इसे एक बात और भी तो पता लगती है कि ये जो अगर आपकी चीजें सोशल मीडिया पे हैं पड़ी हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी नौजवान ने डाली होंगी. और बात ये है कि ऐसी फिल्में बनानी जरूरी हैं, क्योंकि आप तो हर तरह के आप ऑडियंस को लेते हैं. जी बिल्कुल.
चना जी, बहुत सा काम है. आप मेरी जिलेशा देखिए, अभी उठा लीजिए यहीं से नेटफ्लिक्स उठा लीजिए, अभी आप गुनाह के गाने उठा लीजिए, आप और बाजार हुसन का सब लेटते मौजूद है जी.
जी हाँ,
ये सब चीजें हैं.
अच्छा
है, और पता नहीं किस किसने डाली है, हमें तो नहीं पता है. बहरहाल जिसने भी डाली है भला उसका.
वैसे हम सुनने वालों से कहेंगे कि अगर आपको पसंद है परवेज कलीम साहब की, इतनी फिल्मों के नाम आए हैं और हमारे बहुत से सामीन जो हैं वो करते हैं यूट्यूब वगैरह पे चीजें डालते हैं, तो प्लीज आप ये चीजें जरूर डालिए ताकि लोगों को मिले. ये लोग जो है ना, इनका बहुत बड़ा काम है. मतलब अभी एक सवाल पूछा है मुजम्मिल साहब ने कश्मीर से, और उन्होंने वही बात पूछी है. उन्होंने कहा है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ बड़ा मुश्किल है आर्ट का पनपना, मतलब इस लिहाज से कि फिल्म का आर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था बीच में, तो किस तरह आपने सर्वाइव किया, आपसे ये सवाल है. लेकिन ये सवाल हम बाद में, इस पर काफ़ी बात भी हो गई है. लेकिन मोहम्मद हुसैन हमारे साथ हैं बन्नू से, उनका सवाल ले लेते हैं पहले. जी मोहम्मद हुसैन साहब.
जी अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम मोहम्मद हुसैन.
मेहमान साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि किसी भी सनत की कामयाबी के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट और तस्वीर, तो तस्वीर जो है वो बहुत अहमियत रखती है। इंडिया वाले जो हैं वो अपनी फिल्मों की तस्वीर तो बहुत खूबसूरत अंदाज से मुख्तलिफ टॉक शोज में बहुत खूबसूरत अंदाज से करते हैं, पाकिस्तानी फिल्मों की जो तस्वीर है उससे मेहमान साहब मुतमैन है या कोई इकदाम वो तजवीज़ करेंगे कि तस्वीर के सिलसिले में भी कुछ इकदाम करने चाहिए?
जी जरूर, बहुत अच्छा सवाल है जी। परवेज साहब, इनका सवाल सुना आपने? परवेज कलीम साहब, परवेज साहब को
ये है कि तस्वीर पे मेरे ही बुजुर्ग नरियाज शाह साहब ने ये अमर बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई, ऐसी फिल्म कश्मीर पे बनी कि मेरा ख्याल है शायद फिर कभी ऐसी ना बन पाए, क्योंकि इतना पैशन, इतना पैशनेट होना किसी बंदे का वो बड़ा मुश्किल है। वो उन्होंने सरमाए की अर्निंग के लिए फिल्म नहीं बनाई थी, उन्होंने कॉज के लिए बनाई थी। वो कॉज के लोग जो हैं, देखिए ना इंडस्ट्री में वो लोग होने चाहिए ना, जहाँ भी हो कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें ये होते हैं कि जी उनका कॉज है, नजरिया है, वो कोई ऐसी बात जो है वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए कि कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ज्यादा। तो मैं सच बोलने का आदमी हूँ, मुझसे झूठ बोला नहीं जाता, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं ये इसको ढकी छुपी बात कह के भी इसको मैं निचूजा देता बात को। लेकिन बात यह है कि आज भी अगर आज अगर हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हो जाएं जो लोग ये चाहें कि हम कश्मीर के मौजू पर बात करें, हम फिल्म बनाएं, तो हम बना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आज एक हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एक चीज चाहिए होती है, कमर्शियल मीडियम है, इसमें लोग रिवॉर्ड चाह रहे होते हैं कि हमें रिटर्न क्या होगा। तो ये जरा भाइयों को ख्याल होना चाहिए कि दिल तो सबका चाहता है कि हम अच्छी कॉज की अच्छी बात करें, वो बात करें जो जनरल है, जो बात हमें जो हमारे दिल की आवाज है या हमारे अंदर की आवाज है वो हम बात करें। लेकिन मुसीबत ये होता है कि उसके लिए एक हमें इन्वेस्टर चाहिए होता है, तो वो कौन है? तो वो आपके सामने है, आप समझते हैं सारी चीजों को। तो भाई को मेरे को यही है कि इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम इस मौजू को जो है किसी भी तरीके से जो है फिर से तशद बान करने की कोशिश करें।
अच्छा, तो हमारे एक और मेहमान गुजरात से मोहम्मद इकबाल आए थे, मगर बदकिस्मती से उनका फ़ोन कट गया। और गाजी मुजम्मिल का सवाल मैंने आपसे पूछ लिया जो शोपियान कश्मीर से था कि वो सरवाइव करने का, तो ज़ाहिर है आपके तो तमाम कहानी असल में यही है। अच्छा ये बताइए, मैं ये बात सोच रही थी कि आपके वालिद साहब जो थे राजपूत साहब, आमतौर से जिनके अपने सिनेमा घर वगैरह होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं कि बच्चों पर बड़ी पाबंदी होती है कि वो फिल्म देखने ना जाएँ, तो ये आपको कैसे?
बिल्कुल आप पता नहीं, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये कैसे फील आ रहा है। मैं आपके फील को बड़ा साथ दूंगा कहना जी कि आप ये फील कर रही हो, मेरे बाप इतने ही सख्त थे। अच्छा। वो नहीं चाहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं। आप यकीन कीजिए, जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम जर्सी चौरी साहब के यहाँ एज कैमरा असिस्टेंट होने के लिए गया था, तो रात को जाहिर लेट हो गया, तो आप यकीन कीजिए बहुत मारा था मेरे वालिद ने।
अच्छा।
बहुत मैं पीटा, हाँ बहुत पीटा था मुझे कि तुम क्यों गए हो, तुम ये काम क्यों करने लगे हो। वो चाहते थे कि असल में होता ये है कि हम ना थोड़ा सा रेपो एक चीज होती है, हम थोड़ा सा उसको भी अभी तक नहीं पूरी तरह डिवेलप नहीं हो पाई, यानी इस तरह नहीं आ सकी कि ये लोग यही समझते हैं कि ये काम जो है ना, ये नाच गाना फला ये वो हमारे यहाँ, ये अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कम वैसे अब, लेकिन ये है कि जो इसको जिसको कंट्रडिक्शन करते हैं इसकी। अब होता ये है कि जाहिर है रवायती जो होते हैं, हर बच्चे का माँ बाप यही चाहते हैं हमारा बच्चा लायक हो, हमारा बच्चा शरीफ हो, हमारा बच्चा शाम को 7 बजे दिए जलने से पहले घर आ जाए। वो एक जमाना था, अब चूंकि जमाना नहीं है था, तो एक अहद बदल रहा था। आज से 40 बरस पहले भी एक अहद ने करवट ली थी, उस वक्त भी शमशाद से लता और साइकिल से रफी कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो उस अहद में हम लोग आए तो बड़ी तकलीफें उठाई, क्योंकि घर वालों की तरफ से सपोर्ट जो है वो प्रॉपर इसलिए नहीं थी कि वो समझते थे कि हमारा बच्चा जो है वो इधर फिल्म में जाएगा तो शायद कोई गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मजे की बात यह है कि
गड़बड़ नहीं की आपने, कोई
उनकी अपनी सोच थी और बिल्कुल शायद ठीक ही होगी।
नहीं, मगर आपने कुछ की गड़बड़ फिर? मैं पूछ रही हूँ कि कुछ गड़बड़ की फिर आपने?
देखिए मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ, ये बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया है। देखिए गड़बड़ तो इंसानी जिंदगी का हिस्सा है
जी,
इससे कोई भागेगा, दामन चुराएगा और ये कहेगा कि जी नहीं नहीं मैं तो सर, तो मैं समझा झूठ बोलना तो बड़ा आसान है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आपके पास सामने माइक होता है और आप कोई बात कह रहे होते हो तो कतई आप झूठ नहीं बोलते, बल्कि इंसान का तराजू आपके हाथ में होता है उस वक्त, आपको झूठ बोलना भी नहीं चाहिए किसी को भी, यानी आप बैठी हुई है माइक के ऊपर, मुझे यकीन है कि आप पूरी अल्लाह के हुक्म से अपने कदो कामत के साथ और अपने पूरे एहसास के साथ जो भी बात कह रही होगी उसमें हिपोक्रेसी बड़ी कम होगी
जी, कोशिश तो यही होती है
जी। हाँ जी, तो यहाँ जहाँ हम लोग जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ सारे है, देखिए वहाँ सौ तरह की बातें हैं, जहाँ हम लोग एक साथ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ सौ तरह की बातें जन्म लेती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, मोहब्बतें हो जाती हैं, अफेयर हो जाते हैं, ये सारी चीजें ह्यूमन नेचर के करीब तर हैं। इससे आप ऐसे ही एक शराफत का वो एक प्रचार करते हुए और खुद को एक बड़ा पता नहीं क्या समझते हुए आप ये इसका कह दें तो ये एक अलग बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसानी फितरत के साथ साथ चलता हुआ सारा सिलसिला है, और जिंदगी एक ऐसा काफिला है जिसमें जो गुजर जाता है रास्तों से पीछे गुब्बारे रह जाता है, लेकिन फिर भी पलट पलट के हम उन लोगों को बड़े गौर से देखते हैं जो लम्हे हम पीछे छोड़ रहे होते हैं।
बस तो वालदैन का ये डर ठीक ही था कि अच्छा बच्चा जो है थोड़ा सा शरीर हो जाता है जब फिल्म वगैरह में जाता है।
जी, वो तो शरीर नहीं हो जाता, वो असल में फितरत है इंसान की।
नहीं मैं समझी, मैं आपको छेड़ रही हूँ, मैं इतराज नहीं कर रही आपके। अच्छा, गुजरांवाले से नजीर अहमद साहब हमारे साथ हैं। जी नजीर साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत नवाज़िश होगी। मेरा सवाल जो है ना, जो आप भी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि पिछले प्रोग्राम में अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम चश्मे मस्त से अजद जिस गुलूकार ने गाया था, प्लीज अगर उसका नाम बता दे तो काइंड।
जी हाँ, वो कश्मीर से हमारे साथ थे भैया नज़ीर साहब, उनका नाम था कैसर निज़ामी, उनका नाम है, वो कश्मीर के बहुत ही पॉपुलर गुलूकार हैं और सूफी कलाम वो बहुत गाते हैं, और उनके ख़ानदान की नस्बत है सिलसिला चिश्तिया से, तो ये भी एक उनके दिल पे ना बहुत नक्श है बात। तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर, अगर आप दोबारा फ़ोन करें या पूछेंगे तो हम आप उनके लिंक भी दे दूँगी मैं, अगर आप फेसबुक पर आएँ तो। अच्छा चलिए, हम एक छोटा सा प्रोमो और फिर आप ही की फिल्म से गाना सुनते हैं कलीम साहब, उसके बाद फिर और बातें होंगी।
तो हुआ है ना
भाई, कुछ तो कहिए ना, कहो ना कहो
कुछ तो चाहो,
कम में बुबुश ना
कुछ कहिए ना,
लख होते हुआ है, कहो ना कहो ओ कोशे ताको।
अपने सवालात के साथ इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें, हमारे माहिरीन आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान में हफ्ते की रात को 10 से 11 बजे तक पेश किया जाता है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर मुफ्त कॉल कर सकती हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0800-777-89। हफ्ते की रात 10 से 11 बजे तक फोन कीजिए 0800-777-89। प्रोग्राम है
Thank you.
سامعین، یہ پروگرام وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے کچھ تو کہیے. ہمارے مہمان معروف ڈائریکٹر اور کہانی کار پرویز کلیم صاحب ہیں. پرویز صاحب، ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں. ایک فیس بک پہ کسی نے پوچھا ہے، آرزو اشفاق ان کا نام ہے، انڈین کشمیر سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے پسندیدہ ایکٹر اور گلوکار کون ہیں؟
دیکھیے جی، میرے پسندیدہ جو گلوکار ہیں وہ میڈیسن صاحب اور میڈم نورجہاں، یہ میرے پرگتا، یہ میری پسندیدہ ہیں گلوکار. اور آج اگر آپ کرنٹ میں پوچھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یوتھ جو ہے وہ ان کا چونکہ عہد بدل گیا ہے، میں نے عرض کیا ہے کروٹ لی ہے، میوزک کا جو پریزنٹیشن جو سٹائل ہے وہ سارے کا سارا فیوژن اور یہ وہ آ گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک الگ سا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. چونکہ عہد کوئی بھی ہو اور اس میں سر کوئی کسی بھی طرح کا ہو، وہ سر ہونا چاہیے، چاہے فیوژن ہو، چاہے غزل ہو، چاہے گیت ہو، چاہے کلاسیکل ہو، چاہے نیم کلاسیکل ہو، اس میں سر کا میزان قائم رکھنے والا سنگر اور گانے والا جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل داد ہے.
اچھا، آپ کے ساتھ ایک مطلب میرا خیال ہے جو پریولیج آپ کو حاصل ہے جنریشن کے گیپ کے لحاظ سے، وہ یہ کہ آپ کے بیٹے جو ہیں عدیل، وہ بھی آپ کے ساتھ، آپ دونوں مل کے کام کرتے ہیں کئی فلموں میں اور ڈائریکشن میں.
ماشاء اللہ، جی جی، وہ اتفاق ہے، میرے خوش نصیبی ہے کہ بھائی لوگ میں میرا اس کا ٹائٹل ایک ساتھ ہے، باپ بیٹے کا. وہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، میرا شاگرد بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے.
اچھا،
تو وہ ماشاء اللہ، وہ اس نے جو ہے اجیل پی کے نے ماشاء اللہ وہ اتنا اچھا ویڈیو کر رہا ہے، ایڈیٹنگ اس کا ماشاء اللہ بڑا لاجواب ہے. وہ اچھا اچھا یوتھ ہے نا جی، وہ تیز بچے ہیں ماشاء اللہ، اتنے اچھا کام کر رہا ہے وہ کہ میں داد دیتا ہوں اس کو، سچی بات ہے.
تو آپ نے اتنی تعریف کی ہے تو ہمیں عدیل کو بھی لانا پڑے گا اپنے کسی پروگرام میں، کیونکہ اگر آپ جیسا ڈائریکٹر، مطلب واقعی آپ تو گوہر شناس ہیں نا، تو آپ بلا وجہ تو تعریف نہیں کر سکتے. اچھا، تو اور بچوں کے بارے میں بتائیے آپ نے، باقی بچے آپ کے.
جی باقی بچے دیکھیے کہ ایک بچہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سنیماٹوگرافر بن رہا ہے وہ، کیونکہ میں دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس شعبے میں آپ ہوتے ہو کم از کم اس شعبے کا آپ پہ بھی کچھ حق ہوتا ہے. جس شعبے سے آپ بچے پالتے ہو اسی شعبے میں آپ کو اپنے بچوں کو یہ، اگر وہ اچھا کام نہیں تو آپ کیوں کرتے رہے ہیں اتنا اچھا
جی.
تو اس لیے میں اپنے بچوں کو، ہاں میں اپنے، میرے دو بیٹے جو ہیں تین، وہ ماشاء اللہ اسی شعبے میں ہیں، اسی فلم میں ہیں، وزیر ہے، حسنین ہے، زین ہے، یہ میرے بچے اسی میں ہیں. ایک میرا بیٹا ہے جو وہ اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتا،
اچھا
اس کو تھا ہی نہیں. ہاں، آصف محمد آصف اس کا نام ہے، آصف کریم کے نام سے وہ جانا پہچانا جاتا ہے. تو وہ ساؤنڈ کا کام کرتے ہیں، وہ کچھ اور طرح کا کام کرتے ہیں، وہ تو وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا.
تو دیکھیے جنریشن کتنا فرق ڈالتی ہے. جو آپ کے والد کی جنریشن ہوتی تھی وہ کہتی ہوگی کہ لڑکا بگڑ گیا فلموں میں چلا گیا، اور آپ یہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا بگڑ گیا فلموں میں آیا ہی نہیں جی، وہ تو کسی اور طرف چلا گیا.
جی ہاں، وہ اور طرف چلے گئے، ظاہر ہے فرق آتے ہیں، وقت بدلتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے نا جی، پھر ایک چینج آ جاتا ہے ایک بڑا، تو ہے وہ ہے وہ ہے جنریشن گیپ بھی ہے، وہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنا آرتھوڈاکس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی پابندیاں چیزیں ایسی، بچوں کے شوق کو بھی دیکھیے اور پھر ان کو جو ہے اگر چل جائے. دیکھیے میرے گھر میں اگر فلم ہے، میں نے اگر فلم میں کام کر کے اپنے وہ بچے پالے ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ دنیا کا اعلیٰ کام ہے، یہ فائن آرٹ ہے. یہ اس کام میں تو سب کو آنا چاہیے، جو بچے بھی چاہیں جن کا شوق ذوق ہے وہ محنت کریں. انشاءاللہ اب تو ڈیجیٹل کام، اب تو بچوں کے ہاتھ میں کیمرے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ویڈیو یہ جو ہاتھ میں آپ کے موبائل ہے، اس سے فلم بن سکتی ہے
وہ خود ہی روز بروز. ہاں، اسمارٹ فون اتنا اسمارٹ ہوتا جا رہا ہے روز بروز. اچھا، اسلم خان نیازی ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوکیٹ میاں والی سے. جی اسلم خان نیازی صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بالکل.
اب میں دراصل ابھی بیدار ہوا ہوں، اپنا نیند میں کچھ چلا گیا تھا اپنا، مطلب مجھے نیند آ گئی تھی، تو مجھے عدیل صاحب کا نام تو پتہ چل گیا کہ ان کے یہ صاحبزادے ہیں، لیکن آپ کے موجود مہمان کون ہے آج؟
میں ابا کا نام نہیں پتا تو پھر کیا پتا لگا. پرویز کلیم صاحب جو معروف فلم ڈائریکٹر اور کہانی کار، اور اسلم نیازی صاحب ہمارے بڑے باذوق سامع ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو. کلیم صاحب جی. جی اسلم صاحب
جی، دراصل مجھے نیند آ گئی تھی، میں آپ کا پروگرام سنتے سنتے سو گیا تھا.
اچھا اچھا.
تو ابھی بیدار ہوا تو سچی بات ہے کہ میں نے آپ سے وہ کوئی وہ نہیں
پرویز کلیم صاحب نے سینکڑوں فلمیں بنا سینکڑوں فلمیں بنائی ہیں, کہانیاں بھی لکھی ہیں, یہ دوبارہ سے ان کی کوشش ہے کہ ریوائیو کیا جائے پاکستانی فلم انڈسٹری کو.
کیا نام بتایا آپ نے؟ کلیم
پرویز. پرویز کلیم.
کلیم پرویز صاحب.
جی
جی پرویز
کلیم صاحب.
جی پرویز کلیم. جی تو مطلب میں سامنے تو آپ کا مستقل ہوں, اور لیکن یہ ہے کہ مجھے سچی بات ہے کہ کلیم صاحب کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے, تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ان کے جو سرزادے ہیں وہ ان کے ساتھ مطلب کیا وہ کرتے, معاونت کرتے ہیں
فلمیں بنانے میں؟ یہ مل کے انہوں نے ایک فلم ہے بھائی لوگ, اس میں انہوں نے مل کے ڈائریکشن دی ہے اس فلم کی. تو چلیے بہت شکریہ, آپ سنیے ہمارا پروگرام. جی 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 آپ ہمارا پروگرام سنیے. تو پرویز صاحب ابھی میں جب وہی گوگل کی پھر بات آئے گی کہ میں جب آپ کے بارے میں تھوڑا کوشش کر رہی تھی مختلف چیزیں جاننے کی, تو اس میں ایک جگہ ذکر تھا کہ رجسٹریشن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے گورنمنٹ نے فلم انڈسٹری میں, تو جس میں ڈائریکٹرز میں بہت عدم اتفاق ہے, اس پہ یہ کیا ایشو ہے رجسٹریشن؟
رجسٹریشن تھی وہ رجسٹریشن بڑا تجدید کا, تو دیکھیے بات یہ ہے کہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے پروڈیوسرز کو, ٹھیک ہے؟ چونکہ وہ لوگ رجسٹرڈ ہوں وہ آ کے ڈائریکٹر رجسٹر اگر ہوتا ہے, سپوز کہ بھائی ڈائریکٹر, دیکھیے ڈائریکٹر کون ہوتا ہے, جو آدمی محنت کر کے ایک اپرینٹس سے اسسٹنٹ سے وہ بندہ ڈائریکٹر بنتا ہے, دو تین فلمیں بناتا ہے, تو پھر وہ ریکگنائز ہوتا ہے نا, لوگ اس کو مانتے ہیں نا کہ یہ ڈائریکٹر ہے, اس سے پہلے تو نہیں مانتے. تو رجسٹرڈ وہ ڈائریکٹر ایک, ہاں ایک چیز میں چاہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ ایک خاص مقرر کر دیا جائے تعلیم کا معیار, یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا ایجوکیشن, پھر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جتنا ان کا ایکسپیرئنس ہے جہاں جہاں سے وہ گزرے ہیں وہ ان کا سیری بڑی پکی ہونی چاہیے, تو وہ مل ملا کے ایسے ہو, تو وہ کچھ بندے نہیں اس کو چاہ رہے تھے, کچھ لوگ نہیں چاہ رہے تھے, تو وہ میرا خیال ہے کہ راستے نہیں رہ گیا یہ پریزنٹ, ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے.
اچھا اچھا ہمارے ساتھ ہیں اٹک سے محبوب الہی صاحب. جی محبوب الہی صاحب. محبوب الہی
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی
میرا تقریباً تیسری مرتبہ آپ سے بات ہو رہی ہے, آنکھوں سے نابینا ہوں.
اچھا
اور گاؤں ہے میرا اٹک میں, تحصیل حضرو ہے, نرٹوپا گاؤں ہے.
اچھا
میرے گاؤں کے ایک رہنے والے ڈائریکٹر تھے بابا کلندر.
اچھا
بابا کلندر کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کتنی فلمیں بنائی, کتنی پنجابی اور کتنی اردو, اس کا آپ کیسے آدمی تھے, ذرا ان سے مطلب جواب لینا, اور ان کو مطلب ہے کہ میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم, خدا حافظ.
محبوب الہی صاحب بہت شکریہ, خدا حافظ. جی
اچھا بڑا اچھا, انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں یادش بخیر, ایک پرانی بات.
دیکھیں کلیم صاحب آپ یہ سوچئے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹک کے بول رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ فلموں میں دلچسپی نہیں ہے, ان کو نہ صرف فلموں میں دلچسپی ہے بلکہ ڈائریکٹرز کو جانتے ہیں, یہ جاننا چاہتے ہیں مزید. اصل میں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے, بات یہ دلچسپی کسی اور لیول پہ جیسے کہ آپ نے کہا ہونی چاہیے. چلیے بابا کلندر کے بارے میں بتائیے آپ.
جی بابا کلندر جی ہمارے بڑے بزرگ تھے, پرانے لوگ تھے, بہت پرانے, آج سے انہیں انتقال کیے ہوئے میرا خیال ہے 30 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں جب تھے انہوں نے کی جب یادگار کر میں ان کا ذکر کروں گا, دو فلمیں ان کی یادگار تھی, ایک پنجابی زبان میں فلم محلے دار تھی.
اچھا
جس میں زلفی مرحوم نے رول کیا تھا, بڑا آؤٹ سٹینڈنگ رول تھا, اور ہم لوگ اسسٹنٹ تھے اس دور میں, ٹھیک ہے جی. میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے بابا کلندر کے ساتھ بھی, پھر وہ زندگی ایک فلم بنائی انہوں نے جس کے میوزک ڈائریکٹر ماسٹر عبداللہ صاحب تھے, اردو زبان کی فلم تھی یہ, بڑی خوبصورت فلم بنائی انہوں نے, مالے دار بنائی, اس کے علاوہ بھی فلمیں دو چار پانچ سات ایسی بنائی ہیں انہوں نے, لیکن وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کرتی. یہ دو فلمیں ان کے ریکارڈ پہ اتنی زبردست ہیں کہ میرا خیال ہے کسی فنکار کے لیے یہ دو فلمیں ہی کافی ہیں کسی ڈائریکٹر کے لیے.
ویسے آپ بات کر رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے, تو آپ کبھی کوئی رول وغیرہ بھی کرتے تھے فلموں میں یا گانے کا شوق تھا؟
مجھے میری فلم ابھی اٹھا لیں یہاں سے, مجھے چاند چاہیے کہیں سے نیٹ سے, شان اس کے ڈائریکٹر تھے, میں رائٹر تھا, اس میں میں نے ایکٹ بھی کیا ہوا ہے.
کیا نام کیا ہے فلم کا, نام کیا ہے فلم کا؟ کیا
مجھے چاند چاہیے.
مجھے چاند چاہیے. اچھا
مجھے چاند جی, تو ایک رومانٹک فلم تھی, تو اس میں وہ اس میں میں نے ایک رول کیا ہوا ہے, اس کا فادر رول ہے, وہ دیکھ لیجیے وہ سارا مل جائے تو. اب تو خیر پروگرام ختم ہونے والا ہے, 5 منٹ رہ گئے, تو خیر انشاءاللہ یہ ہے کہ بہت سا کام کیا ہے جی مجھے, میں چونکہ بنیادی طور پہ جی میں ریڈیو سے آیا ہوا آدمی ہوں.
اچھا
میں آج یہ انتخاب کروں یہ بھائی صاحب کا आप रेडियो से कह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब आया था तो रेडियो से ही मैंने एक कला की थी।
क्या करते थे?
सदाकारी का ही मैं काम, मैं सदाकारी थी।
अच्छा,
उस वक्त मेरे पास और कोई काम नहीं था ना, डायरेक्टर तो बनना चाह रहा था
जी।
राइटर के बाद में बनाऊँ वो बनना चाह रहा था, लेकिन इतफाक ये रास्ते नहीं होते ना, रास्ते तो होते नहीं है, रास्ते तो आपको खुद थोड़ी मेहनत से पैशनेट होकर बनाने पड़ते हैं और अल्लाह तबारक तआला फिर उसमें मदद करते हैं, तो फिर आपका कोई तो इतने बरसों में कभी भी थोड़ा बहुत नाम हो जाता है, एक मकाम बन जाता है, अल्लाह मियां बना देते हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं आवाज ही का जो है आदमी था, तो मैंने वहाँ रेडियो में जो होता था ना वो अगर आपको याद हो या कभी आपने सुना हो, खैर आपकी कोई उम्र इतनी नहीं है, तो वो अगर आपने सुना हुआ हो तो वो रेडियो में जब गाने चला करते थे ना तो लोग इस तरह देखते थे जैसे आज टीवी के गाने देखते।
जी हाँ, स्टूडियो नंबर 9 तो मुझे याद, इतना मशहूर होता था स्टूडियो नंबर 9।
तो वो जो एक था एक वो एक वो वहाँ सपोज मुझे कभी ना पहला एक मिला था मुझे वो सेंटेंस आज तक नहीं भूला, शुकुर बेदिल साहब थे, उन्होंने किसी से सिफारिश की और मुझे वो ये शुकुर बेदिल वो साहब वो हैं जो खयाम साहब इंतजार में जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके भाई थे।
अच्छा।
तो रेडियो प्रेजेंट प्रोड्यूसर थे लाहौर में, तो मैं वहाँ कैंटीन पे बैठा हुआ था तो मुझे उन्होंने कहा जा यार, तो मैं चला गया और मैं गया तो उन्होंने किसी से सिफारिश की, पता नहीं दिलीप साहब थे ये कौन साहब भूल जाऊँ, बहुत अच्छे की बात है, ये मतलब शायद 45 वर्ष पहले की बात है।
अच्छा।
मैं शायद 16-17 साल का था उस वक्त, तो मुझे वहाँ लेके गए तो मुझे जो पहला सेंटेंस मिला कि वो ये था कि बाहर बहुत बारिश है बेगम साहब, बाहर बहुत बारिश है बेगम साहब, अगर आप कहें तो मैं खिड़कियाँ बंद कर दूँ।
अच्छा।
तो ये मेरा पहला जिंदगी का शो बिजनेस में होके 17 दफा जो एक मैंने ये तो मुझे याद है 16 या 19 रुपए का चेक मुझे मिला था।
और आपने कितनी दफा उसको किस अदा से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पहली तो
बड़े लिहाज से, फिर मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया जरा थोड़ा सा मुलाजिम जैसे होते हैं नौकर, मुँह चढ़े भी होते हैं घर में, वो भी अंदाज आप इख्तियार कर सकते हैं, और वो जो होते हैं जो दबेल से होते हैं वो भी कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ऑप्शन मिल गया था, तो मैंने फिर जैसे ही जैसे उन्होंने फरमाया था मैंने वैसे किया उस वक्त।
अच्छा, आपके एक और फैन हमारे साथ हैं खुशाब से, शौकत अली साहब। जी शौकत अली साहब, शौकत साहब
सलाम अलैकुम।
जी वालेकुम सलाम शौकत साहब,
आज आपने बड़ा अच्छा मेहमान बुलाया, आप तो बड़े अजीम आदमी हैं, बड़े फनकार हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं,
जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मैं आपका बड़ी तारीफ कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा किया है, जो कोई गाना तो सुना दें।
अब ये तो मैं भी चाहती हूँ कि कलीम साहब इतने
कोई गाना सुना दें ना,
आपको इतना चाहते हैं, चाहने वाले हैं,
बोल रहा हूँ शौकत अली
साहब आपको इतना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपको गाना सुना दे, उनको भी आपकी आवाज अच्छी लग रही है।
मैं गाना सुना दूं?
बस उनको
देखिए सदाकारी कुछ और है। हाँ। और उसमें गुलूकारी कुछ और है,
अपनी पसंद का कोई शेर
है
जी,
तो मैं उनको एक गजल है वो मैं सुना देता हूँ,
जरूर
याद है
जी।
ठीक है
जी सर,
तो वो पता नहीं उनको पसंद आएगी नहीं आएगी,
क्यों नहीं आएगी पसंद,
वो कुछ तो मैं करता नहीं, तो वो मुझे जो याद है जो मुझे थोड़ा सा फील है मेरा,
ठीक है
मैं सुना देता हूँ अगर आपकी इजाजत हो।
प्लीज, मैं तो बहुत खुश होंगी अगर आप सुनाएंगे तो।
आया तेरी महक गर हो मान बस मैं खां न बगू
वाह वाह, आपकी आवाज़ तो, आप तो बड़े सुर में है, सबसे बड़ी बात तो ये, बहुत अच्छा आवाज भी बहुत अच्छी है आपकी, पता होता तो मैं पहले से फरमाइश करती आपसे कि पूरा कोई गजल सुनाइए आप हमें। अच्छा, कोई हमें अच्छा सा अपनी जिंदगी का वाकया सुनाइए जिसका आपके दिल पे बड़ा असर हुआ हो। मेरा ख्याल है कि अंजुम जरा सा दोबारा मिलाइए, इनका फ़ोन कट गया है और मैं चाहती हूँ हम इन्हें खुदा हाफिज़ कह लें, लेकिन इस दौरान मैं अपने सुनने वालों को बता दूँ कि अगर आप अब भी फ़ोन करना चाहें तो आप पता नोट कर लीजिए, माफ़ कीजिएगा, टेलीफोन नंबर 08007778 89 یہ ہمارا پتہ ہے. یہ اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کا فون کٹ گیا ہے اور لائن ویسے انجم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے مہمان پرویز کلیم صاحب جو کہ مشہور ڈائریکٹر کہانی کار ہیں ان کو خدا حافظ کہہ سکیں معقول طریقے سے. اور وہ بیچارے ایک فنکشن میں تھے اس وقت, فلم میکنگ سے متعلق ایک فنکشن تھا جس میں وہ تھے, لیکن ہمارے کہنے پر وہ فنکشن کے دوران اٹھ کر آئے اور آپ نے سنا کہ بہت اچھی سی انہوں نے باتیں کی. تو میں نے پہلے بھی اپنے سننے والوں سے درخواست کی تھی کہ آپ میں سے جو لوگ کرتے ہیں اس پہ یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالتے ہیں ویڈیو اور آڈیو, تو پلیز آپ پرویز کلیم صاحب کی فلموں کو ضرور ڈالیے کیونکہ اچھی سی فلمیں ہیں, گیت ڈالیے اس کے تاکہ یہ جو خزانہ ہے نا ختم نہ ہو. تو انجم آگے پرویز صاحب, میرا خیال ہے پرویز صاحب کی جی انجم بڑی خوشی سے مجھے بتا رہے ہیں کہ پرویز صاحب آگے ہیں. جی پرویز صاحب آواز آ گئی آپ کو؟ میں نے کہا کہ اس طرح تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے بغیر پراپر طریقے سے خدا حافظ کہے اور شکریہ ادا کیے بغیر.
بڑی پیار, بڑی محبت, بڑی شفقت, بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں آپ ماشاء اللہ. میں چونکہ میں نے نا آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم میرا وہ ہوا
جی جی,
تو مجھے بڑا اچھا لگا اور ماشاء اللہ بڑا اچھا ٹون ہے آپ کا, بڑا اچھا اسٹائل.
بس مجھے بھی بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے. اصل میں میرے خیال ہے آپ اور میں دونوں باتوں نہیں ہیں, یہ باتیں ہم دونوں شوق
ایسا بھی ہے, ایسا بھی ممکن ہے. خیال ہے کہ جو بات کہہ دینے والے لوگ اس سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں,
زیادہ اچھے ہوتے ہیں. بس یہ بالکل آپ نے میرے دل کی بات کہی اس وقت. تو اب انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی عدیل کے ساتھ, کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہم عدیل کو بھی بلائیں پروگرام میں اور پھر ہم اس پہ بات کریں کہ دو جنریشنز مل کے.
ضرور ضرور, جی اس لیے تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہوگا, مجھے بڑا اچھا لگے گا.
بالکل. تو بہت پرویز کریم صاحب دلی طور پہ میرا شکریہ قبول کیجیے آنے کا, اتنی اچھی باتیں کرنے کا اور گانا سنانے کا. تو بہت شکریہ. ہمارے مہمان پرویز کلیم صاحب تھے, ہمارے پروڈیوسر تھے انجم گل اور ہماری انجینئر تھی زینب. شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. اور یہ گیت سنیے
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.